खाना ऑर्डर कर दो, सादिया ने कहा। वो बात यहीं खत्म करना चाहती थी, लेकिन रेहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। घर पर मैसेज कर दो कि हम पहुंच गए हैं, बस इतना कहकर वो उठ गया और सिटिंग एरिया की तरफ चला गया। सादिया उसे जाते हुए देखती रही। वो समझ चुकी थी कि इस वक्त रेहान के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर इकबाल और सुल्ताना बेगम वकील के बारे में बात कर रहे थे। सुल्ताना बेगम थोड़ी गुस्से में थीं। हमारा वकील किसी काम का नहीं है, मैं तो कहती हूँ कोई नया वकील देख लो, हर बार बस तारीख पर तारीख मिल रही है। इकबाल ने उनकी बात सुनी और कहा, नए वकील की बात क्यों कर रही हो? सुल्ताना बेगम ने झुंझलाकर जवाब दिया, तो और क्या करूं, हमारे किरायेदारों ने तो हद कर दी, घर के अंदर ही किसी और को रख लिया है। उन्होंने थोड़ा डरते हुए कहा, इतना बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, पूरा गुंडा लगता है, उसे देखकर तो मुझे भी डर लगता है। इकबाल चौंक गया, क्या हमारे घर में किरायेदारों ने किसी और को रख लिया है? उसे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आप ये क्या कर रहे हैं? सुल्ताना बेगम ने नाराज होकर कहा। मैंने क्या किया? इकबाल ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। सुल्ताना बेगम ने सीधे कहा, वो लड़का एक बार हमदर्दी में यहाँ आ गया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बार बार बुलाते रहें। वो साफ तौर पर फैजान की बात कर रही थी। आप नूर को उससे बात करने क्यों दे रहे हैं? जवान बेटी है हमारी, जरा जरा से मैसेज पर उसे फ़ोन देना ये ठीक नहीं है। इकबाल ने समझाने की कोशिश की, वो कोई आम लड़का नहीं है, मेरा मतलब है अलग है, दीनदार है, समझदार बच्चा है। सुल्ताना बेगम ने तुरंत जवाब दिया, चाहे जो भी हो, आप अपनी बेटी को सबसे दूर रखिए, आप खुद देख रहे हैं दुनिया कैसे बदल रही है। अब इकबाल की आवाज़ थोड़ी मजबूत हो गई, वो यहाँ हमारी मदद करने आता है और मुझे इंसानों की पहचान है। फिर उन्होंने साफ लहजे में कहा, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई, एक तरफ माँ का डर था, दूसरी तरफ बाप का। जी अब्बा, नूर उनके पास आकर खड़ी हो गई। इकबाल ने उसकी तरफ देखकर कहा, नूर, फैजान का मैसेज आया है, उससे बात कर लो। जी, नूर ने हल्के से जवाब दिया और फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी सुल्ताना बेगम की आवाज़ आई, मैं एक बार आपके भरोसे पर बेफिक्र होकर देख चुकी हूँ। उनका इशारा साफ तौर पर रेहान की तरफ था। सुल्ताना बेगम, इकबाल ने उन्हें टोकना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी की। मैं ये नहीं कहती कि फैजान ने कोई गलती की है, फिर भी संभल कर रहना चाहिए, बेटी का मामला है। नूर कमरे में आकर उसने फ़ोन खोला, फैजान का लंबा मैसेज था। उम्मीद है आप ठीक होंगी, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, बस आपके अब्बा की परेशानी की फ़िक्र थी। लेकिन जिसके पास एक बाल चाचा जैसा बाप हो, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अब मुझे यकीन है कि आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखेंगी। मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, बार बार एक शहर से दूसरे शहर जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, और जब आप ग्रेजुएशन पूरी कर लें तो बताइएगा, मैं आगे की तैयारी में आपकी मदद करवा दूंगा। एक बार फिर अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नूर चुपचाप मैसेज पढ़ती रही, हर शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर रहा था। उसकी उंगलियाँ फ़ोन पर ठहर गईं, जैसे वो कुछ लिखना चाहती हो, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। कमरे में सन्नाटा था और उसके दिल में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। फैजान ने मैसेज तो भेज दिया था, लेकिन वो अपने कमरे में बेचैन था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था नूर से इस तरह दूरी बनाना। वो कमरे में इधर उधर टहल रहा था, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो, मगर दिल मान ही नहीं रहा था। उधर नूर मैसेज पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। उधर नूर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी वही मैसेज पढ़ रही थी। उसकी खिड़की खुली हुई थी, हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने गई, साथ वाली छत पर एक आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, लंबा सख्त चेहरा, वही खलील जिसे रेहान ने भेजा था। वो सीधा नूर के कमरे की तरफ देख रहा था, उसकी नज़रें ठहरी हुई थी, जैसे वो हर चीज़ को ध्यान से देख रहा हो, समझ रहा हो। फैजान के लिए उसके दिल में अभी कोई खास फीलिंग नहीं थी, मगर जिस तरह उसने खुदा हाफिज़ कहा था, उसमें एक अपनापन था जो उसके दिल को छू गया। वो चुपचाप उठी और अपनी अम्मी अब्बा के पास आ गई। इकबाल ने उसे देखकर पूछा, तुम रो रही थी? नूर खुद भी चौंक गई, उसे पता ही नहीं चला कि वो कब रो पड़ी। उसने धीरे से कहा, आपने मैसेज नहीं देखे? मतलब साफ था, इकबाल ने उसे फ़ोन देने से पहले मैसेज नहीं पढ़े थे। मतलब? इकबाल ने हैरानी से पूछा। सुल्ताना बेगम का दिल एक पल को घबरा गया, कहीं फैजान ने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? आपको कैसे पता कि मैसेज मेरे लिए थे? नूर ने पूछा। इकबाल ने समझाते हुए कहा, वो मुझे सीधे कॉल कर सकता था, मैसेज किया तो मुझे लगा तुम्हारे लिए होंगे। अब वो अपनी बेटी का चेहरा देखकर सच में परेशान हो गया। क्या हुआ नूर? सुल्ताना बेगम भी बेचैन होकर बोली, क्या लिखा है उसने? कुछ उल्टा सीधा कहा क्या? नूर ने हल्की टूटी आवाज़ में कहा, उसने फ़ोन करने से मना किया है, वो सिद्धपुर नहीं आ सकता क्योंकि उसके काम का नुकसान होता है, और वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में भी नहीं रह सकता, कहता है इससे उसका ध्यान भटकता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। इकबाल ने शांत लहजे में कहा, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, वो सही कह रहा है। सुल्ताना बेगम ने भी अब थोड़ा सामान्य होते हुए कहा, हाँ, इतनी सी बात पर तुम रो क्यों रही हो? लेकिन नूर कुछ नहीं बोली,
क्योंकि बात इतनी सी नहीं थी। जो उसे समझ आ रहा था वो कह नहीं पा रही थी। फैजान सचमुच बहुत बिजी था। उसका मैसेज करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो बार बार वहां आ नहीं सकता था। अपने कमरे में बैठा वो नूर के बारे में सोच रहा था। सच तो ये था, नूर उसे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो खुद को रोक रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो बार बार उसके पास जाएगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा, और इस वक्त वो अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकता था। उसके पास ना उतने साधन थे, ना ही इतनी फुर्सत की बार बार सफर कर सके। अभी उसे अपनी जिंदगी बनानी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था, इसीलिए वो किसी और पर फोकस नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात ये थी, नूर उसे अच्छी लगती थी, मगर वो ना तो उसे कभी अपना बना सकता था। वो पहले से शादीशुदा था और ना ही उस दर्द से निकाल सकता था जिससे नूर गुजर रही थी। वो जानता था कुछ लड़ाइयाँ इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती हैं। नूर को भी अपने हालात से खुद निकलना होगा। बाकी लोग ऐसे क्यों नहीं होते जैसे फैजान है, नूर धीरे से बोली। उसकी आवाज़ में मासूमियत भी थी और एक हल्की सी शिकायत की। दूसरे लोग भी तो ऐसे ही कह सकते हैं ना, खुदा हाफिज़, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। इकबाल ने उसकी बात सुनी और समझाते हुए कहा, बेटा बहुत से लोग अपनी अना के गुलाम होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी गलती मान लेंगे या थोड़ा छुप जाएंगे तो उनकी अना को ठेस पहुंच जाएगी। नूर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन खुदा हाफिज़ कह देने से किसी की अना को कैसे ठेस पहुंच सकती है। इकबाल ने गहरी नज़र से उसे देखा, ठेस शब्दों से नहीं लगती, ठेस एहसास से लगती है। नूर कुछ पल चुप रही। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिना किसी वजह के किसी की जिंदगी से निकाल दिया गया हो, जैसे सामने वाले ने उसे ठोकर मारकर अलग कर दिया हो। फैजान का खुदा हाफिज़ कहना उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा था, क्योंकि किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था, खास तौर पर अरमान में। नूर चुपचाप अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गई। इकबाल ये समझ गया कि अब मामेटी को अकेले बात करने की जरूरत है, इसीलिए वो वहां से उठकर चला गया। सुल्ताना बेगम ने नूर को अपने पास खींच लिया और प्यार से गले लगा लिया। वो कुछ नहीं बोली,
क्योंकि वो जानती थी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की नहीं सिर्फ एहसास की जरूरत होती है।